बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक होंगे और फिर से एक बार प्रभु के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार होंगे। हमने पिछले अध्ययन में यीशु मसीह को राजा के रूप में अस्वीकार करने और हेरोदेस के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवाने के बारे में देखा था। आज हम उन्हीं घटनाओं के वर्णन पर विचार करेंगे। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हेरोदेस ने यूहन्ना को पकड़वा कर बंधवा दिया था, उसने अपनी पत्नी हेरोदियास के कारण उसे जेल में डलवा दिया था। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि हेरोदेस ने यूहन्ना को पकड़वा कर बंधुआ बना दिया था। यह घटना पहले ही हो चुकी है। हेरोदेस ने यूहन्ना को बंदी गृह में हेरोदियास के कारण ही डलवाया था। अब ध्यान दीजिए कि हेरोदेस दूसरों के द्वारा कैसे प्रभावित हुआ। यहां पर वह हेरोदियास के द्वारा प्रभावित है और बाद में अन्य लोगों के द्वारा होगा। वह एक राजनीति की तरह उत्साहित किया गया। जो कुछ भी उसने किया दूसरों की सहमति प्राप्त करने के लिए किया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि यूहन्ना उससे कहा करता था कि उसे रखना तेरे लिए न्यायोचित नहीं है। यूहन्ना ने हेरोदेस के अनैतिक संबंध के बारे में उसे कहा था। यूहन्ना एक अच्छा राजनीतिक नहीं था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और यद्यपि वह उसे मरवा डालना चाहता था फिर भी लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे नबी मानते थे। यहां पर हम देखते हैं कि हेरोदेस भीड़ से डरता था और हम मत्ती 14 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की पुत्री ने उत्सव में नृत्य करके हेरोदेस को प्रसन्न कर दिया। हेरोदेस एक लंपट और कामुक बूढ़ा प्राणी था जो उस समय अपने भाई की पत्नी के साथ रह रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका विरोध किया था। तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 7 पद में पढ़ते हैं। इस पर शपथ खाकर उसने वचन दिया कि जो कुछ तू मांगे मैं दूंगा। मैं सोचता हूं उसे लगा कि वो कोई धन संपत्ति की मांग करेगी जो उसके पहुंच के अंदर ही होगी। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, और मां के द्वारा उसकाए जाने पर उसने कहा, एक थाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मुझे यहीं दे। मां हेरोदियास हेरोदेस की तरह ही थी। उसका निवेदन एक निष्ठुर और परपीड़नशील था। वह एक निरशंस बदला लेने की इच्छा के द्वारा तैयार थी क्योंकि यूहन्ना ने उसके अनैतिक संबंध का विरोध किया था। हम मत्ती 14 अध्याय उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यद्यपि वह शोकित हुआ फिर भी अपने शपथ तथा भोज में बैठे अतिथियों के कारण राजा ने आदेश दिया कि दे दिया जाए। इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में कल्पना कीजिए जो वायदा करके उसे न पूरा करने से अतिथि उसके विषय में क्या सोचेंगे। इससे वह डरा हुआ था। हम आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 10 और 11 पद में। लिखा है, उसने किसी को भेजकर जेल में यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर एक थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया जिसे वह अपनी माँ के पास ले आई। उस दिन जो पीड़नशील दुखद और घृणित घटना घटी उससे उस समय के समाज के लोग कैसे थे इस बात का प्रगटीकरण होता है जो उस समय में रहते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट दिया गया और उसे एक थाल में नाचने वाले लड़की को दे दिया गया। मित्रों, मनुष्य के स्वभाव में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। आज भी कामुकता और हत्या समकालीन समाज की एक भाग है। हम मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहूना के चेले आकर शव को ले गए और उन्होंने उसे दफना दिया। तब उन्होंने जाकर यीशु को समाचार दिया। यहूना के शिष्यों ने आकर उसके देह को मांगा और बड़ी कोमलता और स्नेह के साथ उसे दफनाया। आगे हम देखते हैं कि यीशु एक ओर हटते हैं, प्रभु एक ओर हटते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हेरोदेस का डर पागलपन कर सकता है और उसे कुछ उतावला या जल्दबाज करवा सकता है। प्रभु यीशु इस व्यक्ति को जानते थे और इस घटना से बचना चाहते थे, क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं पहुंचा था। हम मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर आगे लिखा हुआ है, जब यीशु ने यह सुना तो वह वहां से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान को चला गया। यह सुनकर भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। प्रभु नाव से गलील झील के उस पार गए, परंतु भीड़ उसके पीछे पैदल ही चल पड़ी, क्योंकि वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वे गलील के झील के किनारे चलते हुए दूसरे छोर में उस तक पहुंच गए। इससे यह प्रमाणित होता है कि वह भीड़ के बीच कितना प्रचलित थे। हम मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जब वह नाव पर से उतरा तो उसने एक विशाल जनसमूह को देखा और लोगों पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मित्रों, यहां पर फिर से ध्यान दीजिए कि वे उसके पास बीमार लोगों को लेकर आए। उसने उस दिन सही रूप में हजारों लोगों को ठीक किया। उसने जो चंगाई दी उसकी तुलना में आज के झूठे और गलत शिक्षक ईश निंदक हैं। यह चमत्कार उसके ऊपर प्रतिबिंबित हुआ, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया था वह सभा के सामने और प्रत्येक के लिए एक प्रमाण था। अब आगे हम देखते हैं कि यीशु भूखों को तृप्त करते हैं। मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब संध्या हुई तो चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह स्थान सुनसान है और दिन ढल चुका है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि लोग गांव में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि शिष्य यीशु को सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उनकी सलाह थी कि लोगों को गांव में भेज दें। और हम आगे मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, पर यीशु ने उनसे कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। मित्रों, 5,000 लोगों को खिलाना यह सभी 4 सुसमाचार में मिलता है। इसका एक कारण है कि यह एक महत्वपूर्ण चमत्कार था। यह ऐसे लग रहा था कि शिष्यों ने अपने आप को सभा का संचालक नियुक्त कर लिया है कि वे यीशु से कहें कि उसे क्या करना चाहिए, परंतु उसने उनसे कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। और यह एक असंभव लगने वाली आज्ञा थी। हम मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मित्रों, हमारे दिनों की कलीसियाओं में 5 रोटियां और 2 मछलियां कठिन और दुखद स्थिति का सूचक होती है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि भीड़ को दूर भेजने की आवश्यकता है, जो स्वाभाविक तरीके से उनकी आवश्यकता की चिंता करने की बात है। हम उन्हें भावनात्मक सहायता के मनोचिकित्सक के पास भेजते और भौतिक मदद के लिए सरकार के पास भेजते हैं। हमारे पास भीड़ को देने के लिए आत्मिक रोटियां हैं। यद्यपि यह सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां ही है, परंतु यहाँ पर जिस चीज की कमी है वह है प्रभु यीशु के सामर्थ का। यदि हमारे पास वह सामर्थ आ जाए तो हमें भीड़ को दूर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम इसके समाधान को समझने में असमर्थ हैं कि इसका समाधान न सरकार के पास है और न ही मनुष्य की कल्पना में है, परंतु यह परमेश्वर में है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कलीसिया सामर्थ्यहीन है। हम मत्तयेर के सुसमाचार 14 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। मैं इस प्रतिक्रिया को पसंद करता हूँ। मेरे मित्रों, वह प्रभु है और वह हमसे कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास ले आओ। या ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास है उसके साथ उसकी गिनती होती है, परंतु वास्तव में जो हमारे पास नहीं है उसकी होती है। प्रश्न यह है कि क्या हम जो कुछ हमारे पास है उसे देने के लिए और उसे हमें एक सही दिशा में संचालन करने देने के लिए तैयार हैं। आप इस प्रकार का विचार ना लाएं कि इस छोटे लड़के के पास 5 रोटियां थी और वहां पर 5,000 से भी अधिक लोग भूखे थे और उनके पास 5 रोटियां थी। उसे एक छोटा लड़का लाया था और संभवतः यह उसका दोपहर का खाना रहा होगा और वह इसके हर एक टुकड़े को खा सकता था। 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां, और यीशु ने कहा उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। तब हम मत्तयरचित सुसमाचार उसके 14:19 में पढ़ते हैं, तब लोगों को घास पर बैठाकर उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। उसने भीड़ को आज्ञा दी कि वे घास पर बैठ जाएं। किसी ने हमारे ध्यान को कुछ मजेदार बातों की ओर आकर्षित किया है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में हमें बताया गया है कि उसने उन्हें उनके ओहदे अर्थात पद या समूह के अनुसार 100 और 50 करके पंक्ति में बैठाया। ये लोग रंगीन वस्त्र पहने हुए थे और वहां हरी घास पर संभवतः उन्हें गांव के अनुसार बैठाया गया क्योंकि प्रत्येक गांव के वस्त्र भिन्न थे। वास्तव में यह एक रोमांचक दृश्य रहा होगा कि पहाड़ की एक छोर में अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने वालों के समूह थे। संभवतः वे लाल, भूरा, नीला, संतरे के रंग और बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए थे और संभवतः अधिकतर लोग बैंगनी रंग के वस्त्र को पहने हुए थे क्योंकि यह इस क्षेत्र में अधिकतर इसी रंग को बनाया जाता था। प्रभु ने उन्हें क्रम में बैठाया था क्योंकि प्रभु कामों को क्रमानुसार करते हैं और यह उस पुराने रिवाज के वस्त्रों के फैशन शो जैसे दिख रहा होगा। और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। ये लोग जो अपने आप को सभा के संचालक के रूप में नियुक्त कर यीशु को कह रहे थे कि उसे क्या करना है, अब वे अपने आप को एक वैरा या खाना बांटने वाले के स्थान में पाते हैं जो भीड़ को रोटियां बांट रहे थे। और यह वास्तव में शिष्यों, प्रेरितों, प्रचारकों और हमारे दिनों के मसीहियों का काम होना चाहिए। हमें भीड़ को खिलाना है। हमारी कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो हमें बताना चाहते हैं कि यह कैसे होना चाहिए या कैसे करना चाहिए, परंतु थोड़े ही लोग होते हैं जो इसे करने की इच्छा रखते हैं। एक प्रचारक ने मुझसे कहा कि हमारी कलीसिया में सब अध्यक्ष हैं, सेवक कोई भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पद का प्रमुख या अध्यक्ष बनना चाहता है, जैसे सभा का अध्यक्ष या कोई अन्य स्थान में प्रमुख का पद। मित्रों, कलीसिया को सेवक चाहिए जो जीवन की रोटी को बांटे और वह रोटी परमेश्वर का वचन है और यही हम सबका काम है। सभी विश्वासियों को सेवक होना चाहिए जो रोटी को बांटते हैं। हम मत्तयि रचित सुसमाचार 14 और उसके 20 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, सब खाकर तृप्त हुए तब उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाई। मैंने साधारण रूप में सोचा कि टुकड़ा उठाने का मतलब जिसे उन्होंने उठाया हम कचड़ा या जूठा कहते हैं, जो एक रोटी जैसे है। जब वे खा रहे थे तो उन्होंने बड़ी रोटी देखी और उस खाते हुए रोटी को रखकर बड़ी वाली ले ली और यही आधी खाए हुए रोटी का बचा हुआ टुकड़ा हो सकता है। जो भी हो, मैं इस बात को अब याद करता हूं कि यहां पर रोटी की 12 टोकरियां हैं और मछलियां जिसे छुआ भी नहीं गया। यह हम लोगों के लिए समझना कठिन है जो शहरों में रहते हैं कि पिछली रात संसार में कितने लोग बिना खाना खाए सो गए। और उन दिनों में बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि पूरा पेट भर के खाना क्या होता है, परंतु 12 टोकरी बची हुई रोटी से पता चलता है कि सबों ने भर पेट खाना खाया। हम मत्तयि रचित सुसमाचार 14 और उसके 21 में पढ़ते हैं, लिखा है, खाने वालों में से स्त्रियों और बच्चों को छोड़ पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। मित्रों, वहां पर 5,000 पुरुष थे जिसमें स्त्री और बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। क्या एक स्त्री और एक बच्चे को प्रत्येक पुरुष के साथ जोड़ना बहुत अधिक होगा? वास्तव में प्रभु ने उस दिन करीब 15,000 लोगों को भोजन खिलाया, न कि केवल 5,000 लोगों को ही। आगे हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चलते हैं। जैसे ही भीड़ खाकर तृप्त हुई, यीशु अपने शिष्यों को गलील झील के उस पार भेजते हैं और वह प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हम मत्तयि रचित सुसमाचार 14 और उसके 22 में पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाएं, जबकि वह स्वयं ही भीड़ को विदा करने लगा। यहाँ पर शब्द शीघ्र, अति आवश्यकता और जल्दबाजी या तत्परता का है। मती के लेख में 5,000 लोगों को खिलाने के चमत्कार में इसके अंतिम भाग में एक अनूठा विलोपन है, अर्थात एक चूक है या कुछ जोड़ दिया गया है। वह यीशु की आवश्यकता को लिखता है जिसमें वह भीड़ को वहां से भेजता है और जिसमें शीघ्रता से अपने शिष्यों को नाव से समुद्र में भेजता है, परंतु जो भी हो वह कोई विवरण नहीं देता है। यूहन्ना हमें इसका विवरण बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:15 में लिखा है, इसलिए यीशु यह जानकर कि वे मुझे बलपूर्वक राजा बनाने के लिए ले जाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जो विचार की सत्यता मती प्रस्तुत कर रहा है वह भाग उसकी सेवकाई का एक भाग है जो उसके लिए राजा होने से संबंधित है। शुरू में यह बेकार सा लगता है कि वह यीशु को राजा बनाने की कोशिश से इनकार करता है, और यह एक प्रमाण है जो यीशु के राजा होने के दावे के विशिष्ट चरित्र को दर्शाता है। वह अपने अधिकार और पद के द्वारा से राजा है। वह किसी प्रजातांत्रिक तरीके से राजा नहीं बनेंगे। वह लोगों की इच्छा के द्वारा चुना हुआ राजा नहीं है, वह परमेश्वर की इच्छा के द्वारा राजा है। अंततः वह अपनी सामर्थ्य के द्वारा राजा बनेगा। हम भजन संहिता 2:8-9 में देख सकते हैं। आगे हम मत्ती सुसमाचार 14:23-24 में पढ़ते हैं। लिखा है, भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था, परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत थी। मित्रों, प्रभु पहाड़ पर प्रार्थना के स्थान पर हैं और उसके शिष्य गलील की झील में तूफान के मध्य और अंधेरे में हैं। वे जोखिम भरे स्थान में हैं। मित्रों, आज हमारे दिनों के लिए यह क्या ही दृश्य है। हमारा प्रभु पिता के पास चला गया है और वह पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और आज हम यहाँ पृथ्वी पर तूफान उठे समुद्र के स्थान में हैं, जो जोखिम भरा स्थान है। मैं इसके अगले पद को पसंद करता हूँ जो मत्ती रचित सुसमाचार 14:25 में है, जहाँ पर लिखा है, सुबह के लगभग 3 झील पर चलते हुए वह उनके पास आया। रात्रि का चौथा पहर जो सुबह का समय है, यह लगभग 3 के भोर का समय है जो उजाला होने से पहले का समय है। यही वो समय था जिसमें प्रभु यीशु समुद्र में चले जो अपने शिष्यों के पास जा रहे थे। मैं सोचता हूँ कि यही वो समय है जब वह हमें लेने के लिए आएंगे, जब हम लोग उठा लिए जाएंगे। मसीह कलीसिया के लिए चमकीला और भोर का तारा है और वह कलीसिया को इस संसार से बाहर ले जाएंगे। हम उसके आने की तारीख को नहीं जानते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि वे तारीख और समय जानते हैं, परंतु वे नहीं जानते हैं। जो भी हो, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब रात्रि के चौथे पहर में उठा लिए जाएंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14:26 में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। मित्रों, यह एक वर्णन है कि हमारे प्रभु पहाड़ के ऊपर हैं, वह शिष्यों को समुद्री तूफान में देखते हैं जो नाव चलाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। यह हमें मरकुस रचित सुसमाचार के लेख में मिलता है। तब वह चौथे पहर उनके पास आते हैं, और जब वे उसे देखते हैं तो कहते हैं कि यह कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठते हैं। आप में से कुछ लोग कहने जा रहे हैं कि वे अंधविश्वासी थे। जी हाँ, उनके अंदर में कुछ अंधविश्वास की मात्रा निश्चित रूप में थी। परंतु आप क्या सोचेंगे, यदि कोई मनुष्य पानी पर चलते हुए आपके पास आता है तो आपको कैसा लगेगा। कई साल पहले एक किशोर ने कहा कि मैं भूत पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं एक को नहीं देख लेता, और यही स्थिति शिष्यों की भी थी। इससे पहले उन्होंने भूत कभी नहीं देखा था, परंतु अब वे सोच रहे थे कि वे एक भूत को देख रहे हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14:27 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, मतलब शीघ्र बातें की। वह भरोसा दिलाता है कि वह भूत नहीं है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14:28 में आगे पढ़ते हैं, तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। मित्रों, इस कार्य के लिए निश्चित रूप से पतरस का विरोध किया गया। वे कहते हैं कि उसे पानी पर चलने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, पर मैं इस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूँ। विलियम केरे ने कहा, परमेश्वर से बड़े चीजों की उम्मीद करो और परमेश्वर के लिए बड़े काम करने की कोशिश करो, और निश्चित तौर पर पतरस ने वही किया। मैं डरता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर के उन छोटे चीजों से भी संतुष्ट हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु पतरस को अनुमति मांगने के लिए नहीं डांटते हैं। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 29 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने कहा चला आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि पतरस पानी पर नहीं चल सका, परंतु मेरी बाइबल उस तरह से नहीं कहती है। मेरी बाइबल कहती है कि पतरस यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चला, और यह असफलता नहीं है। पतरस ने एक आश्चर्यजनक मांग परमेश्वर से की, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर ने उसे इस आश्चर्यकारक तरीके से उपयोग किया उन दिनों में जब उसने उसका अनुसरण किया। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे पेंतिकोस्त के दिन प्रचार करने के लिए चुना गया। मित्रों, हम मत्ती 14 अध्याय उसके 30 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। पतरस जब पानी पर चल रहा था तो उसने अपनी दृष्टि यीशु से हटा ली, और जब वह डूबने लगा तो उसने सबसे छोटी प्रार्थना की जो बाइबल में है, प्रभु मुझे बचा। यदि शिमोन पतरस ने इस प्रकार की प्रार्थना की होती, जैसे हम में से कई प्रचारक करते हैं या विश्वासी करते हैं, प्रभु आप सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं, तो पतरस 29 फीट पानी के नीचे होता। इससे पहले कि वह अपने निवेदन तक पहुंचता, पतरस ने सीधे अपने काम की बात को रखा। मुझे और आपको भी इसी प्रकार की प्रार्थना की आवश्यकता है। मित्रों, हम मत्ती 14 अध्याय उसके 31 पद में आगे पढ़ते हैं, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस की समस्या थी कि उसने अपनी दृष्टि यीशु से हटाकर लहरों की ओर कर दिया। आज मैं और आप इस संसार में रहते हैं और जहां पर लहरों को उठते हुए देखते हैं, और यही एक समय है जब हमें अपनी नजरों को यीशु की ओर लगाने की आवश्यकता है। हम मत्ती 14 अध्याय उसके 32 और 33 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई, और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, तू निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र है। मित्रों, हमारे प्रभु ने यह चमत्कार अपने लोगों के लिए किए थे ताकि वे विश्वास के स्थान में लाए जाए। यहां तक कि पतरस ने, जो बोलने में बहुत जल्दबाज था, कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे, और वास्तव में वह पानी पर चला। उसने उसके विश्वास को मजबूत किया होता, पर उसने अपनी दृष्टि यीशु से हटा ली और उसका विश्वास डगमगा गया। मैं पतरस का विरोध नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वही समस्या या वही हाल मेरी भी थी। मैं कई बार अपने विश्वास से बाहर निकल गया और मैंने अपनी दृष्टि उससे हटा ली। यही एक समस्या हमारे दिनों में भी हम सबों के साथ है। परंतु ये बातें घटी ताकि शिष्य उसकी आराधना करें और जाने कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हम मत्तयी सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 34 से 36 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, वे पार होकर गन्नेसरत पहुंचे, और वहां के लोगों ने जब उसे पहचाना तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में समाचार भेजा और लोग बीमारों को उसके पास लाए। वे उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर को ही छू लेने दे, और जितनों ने छुआ वे चंगे हो गए। मित्रों, तूफान शांत होने के बाद भी वह लगातार लोगों की जरूरतों को पूरा करता रहा। फिर से आपके ध्यान को भीड़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो उस दिन चंगे हुए थे। हमारे पास चंगाई के कुछ ही लिखित आंकड़े हैं, परंतु हजारों लोग हमारे प्रभु के द्वारा चंगे किए गए थे। मित्रों, आज हमारा अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपको अवश्य ही इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है, और आपने इस बात को जान लिया है कि हमारा प्रभु सामर्थी है, चंगाई देने वाला है और अद्भुत कार्य करने वाला है। तो क्यों ना आप भी आज उस परमेश्वर पर विश्वास करें और उससे अपने लिए आशीषों को मांगें। प्रभु आपकी सहायता करे एवं आशीष प्रदान करे।
पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान।
टिका हुआ था, घर से कितना दूर गया था। मैं जो पापी भटका हुआ था, घर से कितना दूर गया था।
तूने मुझको आन बचाया, तूने मुझको आन बचाया, पाप से मुझको फिर से मिलाया। सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान।
पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान। पवित्र यीशु, प्रेमी यीशु, सामर्थ में सबसे महान।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कितना मधुर है यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार। कितना सुंदर है यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।